राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम
गांव में तपा हुआ आदमी तपत में झुलसा हुआ आदमी अगर शीतल बड़े बटकी छाया में पहुंचता है तो उसको सुख का अनुभव होता है। ठंडे मकानों में बैठे रहते हैं उनको उस सुख का पता नहीं है। ऐसे ही संसार में भटकते हुए दुख पाते हुए मनुष्य घबरा जाते हैं, उनको सत्संग मिलता है और साधन में लग जाते हैं तो उनको इस बात का पता लगता है कि सत्संग करने से सदविचार करने से अच्छी पुस्तकें पढ़ने से इधर उद्देश्य बदलने से कितनी शांति मिलती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। किसी को कहने और सिखाने की जरूरत नहीं है, करके देख रहे। मेरे बहुत आदमियों से मिलने का काम पड़ा है, हजारों लाखों आदमियों से, क्योंकि व्याख्यान देना उस काम करना घूमना फिरना इसमें बहुत बहुत समय से ऐसा मैं करता हूँ। बहुत से आदमियों से मिलने का काम पड़ा है और सत्संग करने वालों में से एक आदमी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हमारे सत्संग करने से नुकसान हुआ है। एक आदमी ने भी याद नहीं है। तो सत्संग भजन ध्यान से लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। कोई कोई आदमी ऐसा कहते हैं, मैंने परंपरा से सुना है, हमने करके देख लिया कुछ नहीं होता है, हमने सत्संग कर लिया भजन कर लिया कुछ नहीं होता है। ऐसी बात लोग कहते हैं, ऐसी परंपरा मैंने सुनी है। वे भाई भी कुछ दिन ठीक तरह से संयम करे तो पता लगे। वे सत्संग केवल पद गालना इकट्ठा हो जाना और कुछ कथा कर देना कथा सुन लेना भेंट पूजा कर देना इसको ही वे सत्संग कहकर कैसे है कि हमने करके देखा कुछ नहीं होता। भीतर से लगे नहीं है सुना नहीं है और सच्चे सुनाने वाले मिले नहीं है। एक सुनाने वाले होते हैं केवल करने वाले नहीं होते, उनका उतना असर नहीं होता। जो करने वाले होते हैं उनका असर होता है। ऐसे मैंने सत्संग करके देखा है, जो अनुभवी पुरुष है उनका जो असर मेरे पर हुआ है उतना अनुभव नहीं है। कोई कथा करते उनका अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे मेरे देखी हुई बात है, पक्की बात है। परंतु बिल्कुल न करने वाले तो किसी तरह से कथा में लग जाए तो फायदे की बात है। भगवत चर्चा करने से लाभ होता है, भगवान की कथा सुनने से लाभ होता है। वो बिल्कुल ऐसा है कि उद्देश्य नहीं रखते, सावधानी नहीं रखते, ऐसे भी सत्संग में चर्चा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, उनमें भी अच्छी बातें आती ही है। बिना उद्देश्य किए भी एक उद्देश्य अपना उद्धार करने का है, ऐसा विचार न करने पर भी उनका सुधार होता है, ऐसे मैंने देखा है। केवल प्रवाह में पड़े हुए सत्संग करते हैं उनके भी लाभ होता है। बड़े बड़े परमात्म को जानने वाले जिनके लिए कुछ करना, कुछ जानना, कुछ पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे पुरुष भी सत्संग करते हैं। संकादिकों के लिए लिखा है कि आशा बसन व्यसन निष्ठे नहीं, जहाँ हरि कथा हो तहाँ सुने। आशा बसन मन उन कपड़ा ही नहीं, नंग धरन जात रूप धरा लिखा है, जैसे माँ से पैदा हुए ऐसे ही एक धागा ही नहीं शरीर पर। और सत्व ये जीवन मुक्त ही पैदा हुए, जीवन मुक्त ही रहते हैं। बड़ी विलक्षण रूप से महिमा गाई गई है शास्त्रों में। वे भी तीन श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बनते हैं, कथा करते हैं। भागवत माया है, रामायण माया है, कई दिन उनकी कथा जा रही है। तो सत्संग ऐसा अमृत है कि नीचे से नीचा, ऊंचे से ऊंचा सत्संग करते हैं। भगवान राम जी का जब राज्य तिलक हुआ, उसमें भगवान शंकर आए, उन्होंने स्तुति की और अंत में उन्होंने वरदान मांगा, रामायण पढ़ लो। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोद अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर भोले बाबा कहते हैं कि बार बार बर मांगू, मैं बार बार मांगूंगा, एक बार दो बार नहीं, वरदान मांगता हूँ। करते क्या है, सत्संग करते हैं, पाप दिन जो रामायण कथा सुनाते हैं, फिर कहते बार बार बर मांग, वरदान मांगता हूँ और बार बार मांगूंगा। तो बार बार कोई मांगता है तो जन्म वाले को गुस्सा आ जाता है कि किसे पीछे ही पड़ जाए, क्या करता है। तो वे कहते हैं बार बार बर मांगो हर्ष देव, गुस्सा मत करना मेरा, हाँ हर्ष खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, कहीं मत कर देना। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, अरे बाबा क्या चाहते हो, क्या पद सरोज अन पाए नी भक्ति। पक्षी के लिए पार्वती जी कहते हैं तुम पुण्य राम नाम दिन राति, सादर जगहु अनंग, सादर जपहु अनंग अराति। आदर से रात राम 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 राम। अब क्या मुक्ति करनी है, कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कोई सिद्धि प्राप्ति करनी है, क्या करना है, दिन राति राम 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 नाम सुने सुमिरन लागे, जाने उमा जगत पसि जागे, समाधि जैसे सहज, समाधि लग जाती सहज, शंकर सहज स्वरूप संभाला, राग समाधि अखंड अपारा, उस परमात्म तत्व में निमग्न रहते। ऐसा बाह्य वृत्ति होती है तो राम 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 चाने उमा जगत पति जागे, अब समाधि से उठे नाम सुनाई दिया। उनको क्या करना बाकी रह गया, क्या जानना बाकी रह गया, क्या समझना बाकी रह गया, क्या पाना बाकी रह गया। नाम शिव नाम याद करने मात्र से शांति मिले, कल्याण हो जाए, ऐसे भी सत्संग करते हैं। मांगते हैं, करते ही नहीं है, वरदान मांगते हैं। आपके शहरों की अबाध निर्विघ्न सत्संग भक्ति, अबाध भक्ति। अबाध कब होती? जब कामना कोई नहीं होती तब असली भक्ति जागृत होती है। जब तक कामना रहती है तब तक भक्ति ऊंचे दर्जी असली नहीं होती। तो अनपाय नहीं, अपाय नाम विघ्न बाधा, इन बाधा से रहित आपकी भक्ति, कोई कामना न हो, किंचित मात्र भी कामना नहीं। मनुष्य इतना कामना का गुलाम हो गया कि बिना चाहना के कोई क्रिया होती नहीं। जो लोगों के बात भीतर बैठ गई, बिना चाहे के भी काम हो सकता है क्या? इनकी बात जचती नहीं, ऐसा भी हो सकता है? अरे भाई ऐसे ही असली होता है। आप थोड़ा ध्यान दो, बात समझ में आती है। अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष हो गए, उनको संसार से क्या लेना था और संसार क्या दे सकता है, बताओ? आप थोड़ा ध्यान दो, संसार के पास कौन ऐसी बस्ती वस्तु है जो ऐसे तत्व की जीवन मुक्त पुरुषों को दे सके? वे भी सब चर्चा करते हैं, लोगों को भजन में लगाते हैं, स्वयं लगते हैं, ऐसा करते हैं ना। उनकी बातें हम सुनते हैं, इतिहास सुनते हैं, संतों के बीच में आया कि सर्ज सुने तभी ध्यान ध्यान सुन के भगवान के सर्ज सुनते हैं। हनुमान जी महाराज को क्या जरूरत है किसी चीज की? भक्ति के महान आचार्य है हनुमान जी महाराज। और ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञान नाम अग्रगण्य है। तो ज्ञान और भक्ति के भंडार है। योग की कितनी करार बिल्कुल सीख जानते हैं। भगवान सूर्य से शिक्षा पाई है, कितने विलक्षण लोग है। वे हनुमान जी महाराज भगवान का साथ छोड़ करके यहाँ रहते हैं कथा सुनने के लिए। वाल्मीकि रामायण में आया है, भगवान जब परम धाम में जाने लगे, भगवान का मैं यही रहूंगा। ऐसे भगवान के भक्त भगवान का संग जोड़ के सत्संग साथ, जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं कथा सुनूंगा। और एक जगह ही नहीं, जगह जगह होती वहां उतने ही सही धारण करके उतने ही काम सुनूंगा। राजा प्रसून ने 10,000 कान मांगे, 2 कानों से इतनी सुनने में नहीं आती, अधिक कान से अधिक सुनू मैं। तो क्या ये अनजान थे, मूर्ख थे, बेसमझ थे? कितने बिल संवाद, कितने संत महात्मा हो गए हैं सत्संग करते, भजन ध्यान करते, जप करते हुए। नर नारायण भगवान दुनिया के उद्धार के लिए उत्तराखंड में तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, लोगों का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, तपस्या करके। और तकलीफ तो वो उठा रहे हैं, परिश्रम वो कर रहे हैं, और कल्याण दुनिया का हो जाए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नीचता नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। तो पर हित कौन करता है? क्योंकि अपना हित की इच्छा ही नहीं, परवाही नहीं है, मगर हित कर चुके उनकी कोई कमी नहीं रही, वही पर हित में रात दिन लग सकते हैं। स्वार्थी आदमी दूसरे का हित कर सकता है? बम्बई में एक भाई ने कथा सुनाई हमारे, अपनी कहानी, बड़े पैसे वाले आदमी, उसने कहा कि मैं जब बाहर जाने लगा तो अपने लड़कों को कह दिया, भाई वे चंदे वाले आवे ना, उनको कुछ देना, ऐसा कह दिया। फिर ये जो विदेशी कीर्तन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, हरे राम वाले, तो ये गए और कुछ नहीं लिया। शाम को पहुंचे, कहा भाई आए थे कहां से, आए थे कुछ दिया कि हम क्यों गए, क्या मतलब हमारे, हमारे क्या काम आते हैं वो, हम किसी दिए मेरे से कैसे गए। बड़ों के कहने पर सोना नहीं दिया, यही बात उत्तर यही दिया कि क्यों दे बसो, मेरे से कभी काम आया नहीं, फिर आने की कोई संभावना नहीं, ऐसे क्यों दिया जाए। तो सर्वभूत ही थे रथा कौन हो सकते हैं, जिनके अपने कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाहना नहीं, वही तो मात्र प्राणियों के हित में रथ होते हैं, और ऐसे पुरुषों के द्वारा ही दुनिया का हित होता है। स्वास्थ्य हित क्या करेगा, वो तो लूटेगा ही, देखो कहा वैसे कि वो ठगना ठगाई नहीं होती, वही ठगना चाहिए, वही ठगना चाहिए। संसार स्त्री तो पुरुष है, पुरुष स्त्री से, माँ बाप बेटे से, बेटा माँ बाप से, मित्र अपने मित्र से, वो अपने मित्र से, ऐसी मन में चाहना रखने वाले उपकार करेंगे, हित करेंगे, उनके द्वारा भला होगा कि संसार में शांति पैदा होगी, असंभव बात है। क्या करेंगे वो, ऐसे राक्षस हुए, असुर हुए, चोर हुए, डाकू हुए। यहाँ वृंदावन की बात मैंने एक सुनी, जमुना जी के किनारे एक मुर्दा पड़ा था, उसके छाती पर एक पुर्जा लिखा हुआ था, उसने कहा मैंने इसको मार दिया, छाने के पैसे मिले। एक रुपया भी नहीं मिला, फिर मार दिया, बहन सर पैसा इनके पास। तो स्वार्थी आदमी निरंतर मनुष्य हत्या कर बैठता है, क्या वो दुनिया का हित करेगा, उसके द्वारा दुनिया का भला होगा। सूर्य नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ स्वार्थ करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जगमाए, सुपने उपलब्ध परमाए, पर हेतु रहित जग दू उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। भगवान को कुछ संसार लेना नहीं है तो हित करते हैं, और भगवान के भक्त है उनको भी संसार को लेना नहीं है, मन को इच्छा ही नहीं है कि संसार में वो निहार करेगा, संसार को जाएगा, कोई इच्छा नहीं। तो उनके द्वारा दुनिया का हित हुआ है, होगा, ऐसी बात है। स्वार्थी आदमी क्या समझे, क्या करेगा, एक गधा एक को खुजालता, वो उसने बंद कर दिया, उसने बंद कर दिया, ऐसी बातें देखने में आती है। कुत्तों में, गधों में, शूकर कूकर ऊंट खर बड़े पशु वन में चार, तुलसी हरि की भगति बिना सब निरनार, ऐसे ही निरनार, बिना भगवत भक्ति के स्वास्थ्य का त्याग कैसे करेंगे, स्वास्थ्य का त्याग कर करेंगे क्या, वो तो पैसा ही तो सब कुछ है, इसको छोड़ेंगे तो जाएंगे क्या, मिलेगा क्या, क्या फायदा हमेशा करो, हमारे क्या फायदा। अगर ऐसा विचार महात्मा स्तन संत करने लगे तो दुनिया को कोई सत्संग की बात मिलेगी, हमारे क्या फायदा। आप देखते हो हमसे ऊंचे हो उनका हम संग करें, वे देखते हमारे से ऊंचे हो उनका संग करें, तो संत महात्मा भी अपने ऊंचे हो भगवान हो उनका संग करेंगे, फिर हमारे को कौन पूछेगा। सभी लोग ऐसी अटकल लगाएंगे हमारे से ऊंचों का हम संग करेंगे, तो हमारे जैसे नीचों के साथ कौन बात करेगा। वही दयालु करेंगे जो दूसरों का हिस्सा आते, दूसरों के हिस्से अपना हित बनते, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म है ही नहीं। तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने स्वार्थ का त्याग किया है। उस रात दिन स्वार्थ में ही स्वार्थ में लगे हुए, धन बटोरने में, मान बढ़ाई के बदलने में, अपना यश प्रतिष्ठा चाहने में रात दिन लगे, वे क्या कर सकते बेचारा। भार होगा भार, ये पृथ्वी भाराक्रांत कब होती है कि ये स्वार्थी जैसे लोलुप विषयी संग्रही भोगी ज्यादा पैदा हो जाते हैं, पृथ्वी पर भार हो जाता है। पर्वतानां भार होती पृथ्वी की, अच्छी पर्वतों को भार नहीं है, वृक्षों को भार नहीं है, भगवत भक्ति ही न सी भार सदा, उसका भार मेरा सदा ही मेरे पर बोझा रहता है, मार भारी है भी। आप बैठे रहते हो, नींद आती आते, आप माथों को सांप नहीं सकते, माथों को उठा नहीं रख सकते, गिरोगे। तामसी वृत्ति होने से आदमी को शांति मिलेगी, वो दिनों को उद्धार करेगा। नारायण स्वामी की पुस्तक मैंने पढ़ी थी बहुत वर्षों पहले, एक संत का अनुभव, चार प्रश्न मिलती थी, आज से कोई 60 वर्ष पहले की बात है। नानक बाबा यहाँ रहते थे, मैंने दर्शन किए न्यासी में, एक कमर की डोरी बंधी हुई, टाट का टुकड़ा इधर से चावरे पीछे चावरे, बस इसमें सिवाय कुछ नहीं। उसने अपने साधन की बात लिखी, असर पड़ा हमारे पर उस पुस्तक का, कि रात का जागो और रोशनी तेज रखो और घूमते रहो, फिर जीत को जीतो। कैसे जीतो? उसने लिखा है, एक करी के रस्सी बांध के डंडा बांध दिया, ज्यादा तंग करे तो दोनों हाथ रख करके उस ऊपर खड़े हो, नींद ले लो, ज्यादा पड़ जाएगा आदमी, डंडे के सहारे भी खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाएगा। तो नींद का वेग तामसी है, वो आने पर आदमी खड़ा नहीं रह सकता, जो तामसी जिनकी वृत्तियां हैं वो अपने धर्म पर खड़ा रहेगा। ऐसे साधा शरीर भी उनका खड़ा नहीं रह सकता। आप हम बैठे हैं, आप देख लो कि नींद आएगी तो आप बैठे रहोगे, रह सकते हो वैसे, पढ़ना पड़ेगा ही। तो डाका डालना, काम से काम करना, दूसरों को दुख देना, वे आदमी शांति से खड़े नहीं रह सकते, गिरेंगे, पतन होगा, महान पतन होगा, लोक में परलोक में सब जगह ही तमगुण छाया रहेगा। सत्संग में नहीं बैठ सकता। मैं तो कई बार बात कही है, सत्संग करने भजन ध्यान करने वाले आदमी पूछते हैं, उनको उत्तर देने का मेरे काम पड़ा है कि क्या करें, फालतू बात करते हैं लोग, निरर्थक बातें करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे करो कि आ जाए, तब देखो मैंने सत्संग में ये बात सुनी है, देखो मैंने वहां पर अमू से ये बात पढ़ी है, ऐसे शुरू कर दो। तो अच्छा जयराम जी से हम जाते हैं, मक्खियां ज्यादा तंग करे तो बढ़िया असर हाथ लगा करके मुंह फेर लो, एक नहीं बैठेगी मक्खी, उड़ जाएगी सब आगे की नहीं। दुर्गंधी होती तो आती है, मिठाई की दुकान पर बैठी मस्त मक्खियां भी मेले की टोकरी निकले तो बढ़ने सब भी जाएगी और हवा नहीं चलेगी। बहुत तंग करे मुंह पर तो ऐसे लगातार छोड़ सुगंधी करके देख लो, अनुभव कर लो, मक्खी बैठेगी नहीं, भाग जाएगी, वो सुगंधी से ही नहीं सकती। ऐसे निरर्थक और फालतू और खराब भाषण करने वाले सत्संग में ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। मैंने तो उपाय बताया है, ऐसे आप उनके सामने करो, अब बड़े आदमी है हम ना कैसे कहें क्या करें, तुम ज्ञानियों को ऐसे करो, भगवान की बात चलाओ, देखो कितनी देर ठहरते हैं, ताकत नहीं उन्हें ठहरने की, हैरान हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, फिर मेरे ख्याल हैरान नहीं जाए। करके देख लो, तो सत्संग करने वाले आदमी न करने वाले दोनों में प्रत्यक्ष दिख रहा है फर्क बिल्कुल। मयारो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, माया मजूर क्या जाने क्या सत्संग होता है क्या नहीं, जान नहीं सकते, उनको पता नहीं है। डाका डालना, ठगी करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, झूठ कपट करना, ठगी करना, ये काम रहते हैं। रामायण आदि ग्रंथों का तात्पर्य क्या है? रामाधिपत वर्ष जम न रावण आदिवत, फिर राम जी और रावण दोनों का आया, दोनों की एक राशि एक नाम राशि बरगे रावण राम रावण एक नाम के, पर दोनों का चरित्र है तो राम जी की तरह बर्ताव करना चाहिए कि रावण की तरह बर्ताव करना चाहिए? दोनों उदाहरण बताया कि ऐसे करो ऐसे मत करो। शास्त्रों के साथ बोली है कौरव और पांडव दोनों का आशा वर्ण, तो कैसा करना चाहिए? कौरव करे जैसा करना चाहिए, पांडव करे जैसा करना चाहिए, शांति किसको मिलती है? बड़ी होशियारी से नौ नौ अक्षरणी सेना थी, उनमें दुर्योधन ने चालाक से दो अक्षरणी सेना ले ली, वो समझा सेना हमारी विजय हो जाएगी, तो उनकी ग्यारह अक्षरणी हो गई, दो धन सात अक्षरणी हो गई, तो विजय किसकी हुई? सात अक्षरणी हुई। वे सौ भाई थे, यक्ष वित्तो पतत्य था, श्वास में ले गया यक्ष वित्त है, वो यक्ष है ना कुबेर, कुबेर यक्ष सुरक्षा में राक्षसों में कुबेर भरमा विभूति है, तो ऐसे ज्यादा संग्रह करते हैं तो खर्च नहीं करते, शुभ काम नहीं करते, उसको यक्ष वित्त कहते हैं। कथा है आप महाभारत आदि की सुनो, ज्यादा संग्रह वाले पास मिलेगा, तो उनका पतन होता है। ज्यादा संग्रह करा, मान सत्कार चाहता है, बढ़ाई चाहता है, धन चाहता है, नाशवान चीजों की चाहना करने वाला अविनाशी तत्व को कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? नाशवान से विमुख होने पर अविनाशी तत्व को प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भजन ध्यान करने वालों के पास धन नहीं होता, ये अर्थ नहीं है इसका। धन की आसक्ति कामना वाला भजन ध्यान में नहीं लग सकता, खर्च कर नहीं सकता, और धन तो बड़े बड़े हुए, अम्बरीश राजा हुए, राज्य था उनका, ऐसे करने के राजा हुए, महाराज युधिष्ठिर कितने थे, एक दूसरे प्यारे के दुर्व्यसन के कारण से वनवास भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा, दुर्व्यसन नहीं होते क्यों भोगना पड़े, इतने पर भी धर्मो भी वर्षित युधिष्ठिर कीर्तन लेना। अठारह अक्षोणी सेना मरने के बाद परिणाम में राजगद्दी पर बैठे युधिष्ठिर महाराज, तो कितना पाप हुआ, परंतु धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, उनके मन में पाप नहीं था, किसी से बैर नहीं, निर्वैर है। अच्छा रक्षोणी सेना मरी और निर्वैर, से बैर दुश्मन को बनाई नहीं बनाई नहीं, तो जो शांत से तो होते हैं उनके धन भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है, राज्य भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है, और विरुद्ध से त्यागी हो सकते हैं, छूते ही नहीं, पैसा लेते ही रखते ही नहीं पास में, ऐसे भी हो सकते हैं। बाहर की चीजें कोई अटकल नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, वो धन नहीं मिले तो क्या वो विरुद्ध हो जाएगा? एक भूखा और एक ऐसी वृक्ष किया हुआ, दोनों का अवस्था तो एक है, पर भीषण जैसा एक है, एक को तो मिला नहीं, एक खाया नहीं, दोनों भूखे, एकादशी का व्रत किया निराहार, वो भी भूखा, एक को आदमी मिला नहीं वो भी भूखा, दोनों अवस्था एक है, क्या शांति निरंतरम। एक दरिद्री है, एक त्यागी है, दोनों की दशा एक है। पैर में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंतिम दाम नहीं, पास में वस्तु नहीं, फटे कपड़े दोनों के, एक बिरगत के एक त्यागी के, पर दोनों के मन की दशा एक है। तो भाई त्याग से कितनी शांति होती है, कितना आनंद होता है, सुख से मस्ती है, कुछ नहीं रहते मस्ती है। पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है, धन हो तो उसमें खुश है, न हो तो उसमें खुश है, जो जज में जो नित्य परमात्मा तत्व है, नित्य जीव आत्मा है, नित्य के साथ संबंध जोड़ने से शांति मिलेगी, अनित्य के भरोसे पर नित्य को शांति कैसे मिलेगी, असंभव बात है, प्रतिपत्ति बात है। नारायण नारायण नारायण।